हॉस्पिटल में नैना और गौतम आपस में बात कर रहे थे। नैना गौतम को डांट रही थी क्योंकि उन्होंने इशिका को मैडम मर्चेंट कहकर बुलाया था, जबकि इस मामले में अभी तक वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। बातों ही बातों में गौतम ने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद इशिका के जन्म के वक्त उसे आयशा से बदल दिया गया था। वो इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर था और इस वक्त राधिका से बात करने के लिए जाने लगा। गौतम ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको गौतम, अभी हमारे पास में कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। कल को इशिका की शक्ल मैडम मर्चेंट जैसी नहीं हुई तो हम झूठ साबित हो जाएंगे। गौतम ने नैना की बात पर विचार किया, वो सही कह रही थी। गौतम ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें तस्वीर बनने का इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन जिस दिन सब सामने आया उस दिन सबको पता चल जाएगा कि इशिका ही राधिका सिंघानिया की बेटी है। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है ताकि उस चालबाज औरत का फरेब सबके सामने आए, नैना ने जवाब दिया। गौतम और नैना दोनों ने ही इंतजार करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इशिका राजवंश विला में थे। वहां अभिमन्यु वसुधा के पास जाकर उससे बात करने लगा, लेकिन वसुधा ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और वो जाकर इशिका को देखने लगी। इन सब में वसुधा की नई केयरटेकर निवेदिता को भी हंसी आने लगी। जो अटेंशन अभिमन्यु को वसुधा से मिलती थी वो अब इशिका को मिल रही थी। ये सब देखकर अभिमन्यु तिरछी निगाहों से इशिका की तरफ घूर रहा था। निवेदिता ने वसुधा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यकीन नहीं हो रहा कि इस घर में ऐसा एक दूसरा शख्स मौजूद है जिसे आप मिस्टर अभिमन्यु राजवंश से ज्यादा पसंद करने लगी हैं। अब तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, जब मेरी प्यारी बहू मेरे पास है तो मैं किसी और को पसंद क्यों करूंगी, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और वसुधा से कहा, ये गलत बात है दादी, आप अपनी बहू के आगे अपने पोते को कैसे भूल सकती हैं, जबकि इशिका मेरी ही वाइफ है। अच्छा तो तुम मानते हो कि ये तुम्हारी वाइफ है और मुझे तुम दोनों को एक जितनी अटेंशन देनी चाहिए, वसुधा ने उसकी बात को पकड़ते हुए कहा। अभिमन्यु हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा, उसका बिहेवियर बदलने लगा था। अब वो सबके सामने इशिका को अपनी पत्नी कहने से कतराता नहीं था। अभिमन्यु ने बात को टालने के लिए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वसुधा इशिका के पास जाकर हल्का हंसते हुए बोली, बहू, इस पागल को तुम्हारी आदत लगने लगी है, इसका तो ठीक है, लेकिन तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें भी अच्छा लगता है ना ये। अभिमन्यु इशिका के जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखने लगा। हमेशा की तरह वो अपनी नाक पर उंगली घुमा रहा था। इशिका के गाल लाल हो रहे थे। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी बहुत देर हो गई है और इतनी देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चलिए मैं आपका बेड सही कर देती हूँ। वसुधा ने हाँ में सिर हिलाया और इशिका के साथ अंदर जाने लगी। अभिमन्यु उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, मिस सिंघानिया ने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। अभिमन्यु को मायूसी होने लगी। तभी निवेदिता ने उसके पास आकर कहा, सर आज आप यहीं पर सोने वाले हैं या फिर मेन विला में सोने के लिए जाएंगे। राजवंश विला बहुत बड़ा था, एक बड़ा सा घर और उसके आसपास और छोटे विला बनाए हुए थे। वसुधा की सेहत का ध्यान रखते हुए उनके लिए एक अलग विला गार्डन एरिया के आसपास बनाया हुआ था, जिसमें उनके ध्यान रखने वाले केयरटेकर, डॉक्टर और कुछ हाउस हेल्पर रहते थे। अभिमन्यु पहले इंडिया में नहीं रहता था, जब से वो इंडिया आया था तब से मेन विला में अपने बेडरूम में रहता था। निवेदिता के अचानक पूछने पर अभिमन्यु ने कहा, दादी की हालत ठीक नहीं है और ऐसे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, आज रात के लिए मैं इस विला के अपने कमरे में रहूंगा। वसुधा के विला में भी अभिमन्यु के लिए एक अलग से कमरा बनाया हुआ था। ठीक है, निवेदिता ने जवाब दिया। अभिमन्यु बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी निवेदिता ने पीछे से कहा, आपके रूम के जस्ट पास वाला कमरा मिस सिंघानिया के लिए तैयार करवाया है मैंने। अभिमन्यु उसकी तरफ पलटा और भौहें चढ़ाकर बोला, दादी की बातें थोड़ी कम सुना कीजिए मिस निवेदिता। अभिमन्यु को समझते देर नहीं लगी कि जरूर वसुधा ने ही ये सब प्लान किया होगा। वहीं इशिका वसुधा को सुलाने के बाद अपने कमरे में आ गई। उसे नहीं पता था कि पास वाला कमरा अभिमन्यु का है। आज के दिन काफी कुछ हुआ था, इस वजह से इशिका थक गई थी। वो कमरे में आई और आते ही सो गई थी। अगली सुबह इशिका की आंख खुली तो वो फ्रेश होकर वसुधा के कमरे में गई। वसुधा अब तक उठी नहीं थी। जैसे ही इशिका उनके बेड के पास पहुंची, अचानक वसुधा ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुम यहाँ वापस आ गई, तुम्हें नहीं पता हम तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वापस आ गई से आपका मतलब क्या है दादी, इशिका ने हल्के चौंकते हुए पूछा। वसुधा ने उठकर जल्दी से इशिका का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ तुम चली गई थी ना, जब तुम और वो लंबा सा लड़का शादी कर रहे थे तब तुम अचानक गायब हो गई थी। मैंने पूरे एक महीने तक तुम्हें ढूंढा था पर तुम नहीं मिली, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। इशिका समझ गई थी कि वसुधा को अपनी बीमारी की वजह से पुरानी बातें याद आ रही हैं और वो पुरानी जिंदगी जी रही है। वसुधा की बातों से साफ था कि उसे अभिमन्यु और इशिका की शादी से जुड़ा हुआ कुछ याद आया है। इशिका जल्दी से वसुधा के पास बैठी और उनका हाथ सहलाते हुए कहा, दादी क्या आपको याद है कि मेरी और मिस्टर राजवंश की शादी कैसे हुई थी, हम दोनों को वो मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिला।
इशिका इस बार ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठी हुई थी, क्योंकि अक्सर वसुधा बातें बताती तो थी, लेकिन जब डिटेलिंग बताने की बारी आती तो वो भूल जाती। तभी अचानक वसुधा ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे सब याद है। वसुधा को सब याद होने का सुनकर इशिका ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर चमक थी। इशिका अब और देर नहीं करना चाहती थी, उसने तुरंत काफी आराम से पूछा, तो दादी मुझे बताइए ना कि हम दोनों की शादी कैसे हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तुमने रेड कलर का सुंदर सा स्वेटर पहना हुआ था, वसुधा मुस्कुराकर बोली। लाल कलर का स्वेटर? इशिका ने मन ही मन कहा। हाँ, मेरे पास एक रेड स्वेटर था जो मैंने न्यू ईयर पर लिया था। मैरिज सर्टिफिकेट पर मेरी जो फोटो लगी है उसमें मैंने वही स्वेटर लगाया है। इसका मतलब दादी को सच में सब याद आ रहा है। इशिका अपने ख्यालों में खोई थी। वसुधा की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, उस पागल लड़के ने उस दिन काले रंग का सूट पहना हुआ था, तुम दोनों साथ में ही तो अपनी मैरिज रजिस्टर कराने गए थे। इशिका के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे याद क्यों नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु के साथ अपनी शादी रजिस्टर कराने गई हुई थी, जबकि उसे तो वसुधा की तरह कोई भूलने की बीमारी भी नहीं थी। उसकी याददाश्त तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। इशिका ने जल्दी से आगे पूछा, मैं और मिस्टर राजवंश कैसे मिले थे? तुम दोनों को मैंने ही तो मिलवाया था, वसुधा ने जवाब दिया। आपने हम दोनों को कैसे मिलवाया था? इशिका ने आगे पूछा, लेकिन इस बार वो थोड़ा एग्रेसिव हो गई थी। इशिका के तेज आवाज में बात करने की वजह से वसुधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने अपने सिर पर हाथ लगाया और आंख बंद की, मानो उनके सिर में दर्द हो रहा हो। वसुधा ने आंखें खोली और फिर इशिका से कहा, बहू तुम इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इशिका समझ गई थी कि वसुधा एक बार फिर से सब कुछ भूल चुकी थी। हालांकि वसुधा ने उसे पूरी बात ना बताई हो, पर थोड़ा बहुत ही काफी था।
इशिका ने अपने मन में कहा, दादी हमेशा इम्पोर्टेंट मोमेंट पर ही सब कुछ क्यों भूल जाती हैं? हम दोनों की शादी इन्हीं ने अरेंज करवाई थी, पर हम दोनों मिले कैसे थे ये मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? बहू तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वसुधा ने दोबारा पूछा। इशिका ने शांत लहजे में जवाब देते हुए कहा, दादी मैं आपको बुलाने के लिए आई हुई थी, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, चलिए बाहर चलते हैं। इशिका ने बहाना बनाते हुए कहा। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक दवाई नहीं बन जाती थी तब तक वसुधा की याददाश्त पूरी तरह नहीं लौटने वाली थी। वसुधा ने उसकी बात पर हामी भरी और तैयार होने के लिए अंदर कमरे में चली गई। उनके आने तक इशिका ने उनका इंतजार किया, फिर वो वसुधा के साथ डाइनिंग एरिया में पहुंची। आज का नाश्ता काफी लेविश था और काफी सारा शानदार खाना टेबल पर सजा हुआ था। अभिमन्यु का इंतजार करते हुए वसुधा और इशिका बातें कर रही थीं। वसुधा बैठी हुई थी जबकि इशिका उनके पास खड़ी थी। वसुधा ने इशिका से कहा, बहू तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कितना लंबा होगा? उनकी बात सुनकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ कहती उससे पहले वसुधा ने अपना हाथ खोला और बोली, मुझसे तो वो पूरा एक हाथ लंबा होगा या एक हाथ से भी ज्यादा। हाँ दादी उनकी हाइट काफी अच्छी है, इशिका ने हल्का हंसते हुए कहा। हालांकि इशिका की खुद की हाइट कम नहीं थी, लेकिन जब भी वो अभिमन्यु के पास खड़ी होती तो उसे अपनी हाइट कम लगने लगती थी। जैसे ही वो दोनों बात कर रहे थे अभिमन्यु तैयार होकर बाहर पहुंचा। आते ही वसुधा ने तुरंत उससे पूछा, अच्छा मुझे बताओ शैतान लड़की तुम्हारी हाइट कितनी है? अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया, उसने हैरानी से इशिका की तरफ देखा। क्या हुआ? अभिमन्यु ने इशिका से धीरे से पूछा। बस हम जानना चाहते हैं कि आप मुझसे कितने लंबे हो, इशिका ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम खुद ही पास आकर क्यों नहीं देख लेती? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। इशिका को ये सब कुछ काफी नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही वो अभिमन्यु के थोड़ा पास गई अभिमन्यु ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। इशिका की हाइट अभिमन्यु के चेस्ट तक पहुंच रही थी। अचानक अभिमन्यु के करीब जाने पर इशिका का दिल वहीं ठहर गई थी। जब उसने अभिमन्यु के तेज दिल की धड़कनें सुनी तो ऐसा लगा कि उसका दिल भी उतना ही बेकाबू हो रहा है। वो और अभिमन्यु एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए थे। इशिका के गाल लाल होने लगे थे। उसने नज़र उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने धीरे से कहा, अब ठीक है क्या? इशिका ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी हाइट तुमसे कितनी ज़्यादा है? अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा। इशिका कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। शायद अभिमन्यु ने उसे गलत समझ लिया था। उसने अभिमन्यु को खुद से दूर किया और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैं तो बस आपसे आपकी हाइट मैंने आपकी हाइट पूछी थी मिस्टर राजवंश। इशिका की नज़रें नीचे हो गई थीं तो वहीं गलत समझने की वजह से अभिमन्यु एम्बैरेस हो गया था। अभिमन्यु और इशिका इधर उधर देखने लगे। तभी वसुधा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगा, इससे अच्छे से पता चल जाता है कि मेरी बहू इस शैतान लड़के से कितनी छोटी है। वैसे कभी फुर्सत से एक दूसरे के और करीब आओ तो शायद जल्दी मुझे मेरा परपोता भी मिल सकता है। वसुधा की बातों से इशिका की नजरें नीची हो गई थी, हालांकि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु की नज़र उसकी मुस्कुराहट पर गई तो उसके चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। अभिमन्यु वहां ब्रेकफास्ट टेबल पर उनके साथ बैठने को हुआ तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी, मुझे पता चला कि तुम भी यहीं पर हो, तभी हम सब ने यहां साथ ब्रेकफास्ट करने का सोचा। अभिमन्यु ने सामने की तरफ देखा तो उर्वशी जो नक्श की मॉम थी वो मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी।
उसके पीछे पूरी फैमिली थी। अभिमन्यु के डैड मिस्टर प्रशांत राजवंश, नक्श, नक्श के डैड नकुल राजवंश और उनके साथ आयशा। डाइनिंग टेबल काफी बड़ी थी, इस वजह से सब अपनी अपनी जगह लेने लगे। प्रशांत अपनी माँ के ठीक सामने वाली चेयर पर जाकर बैठे, उसके पास में जाकर नकुल और तो फिर उसके आगे नक्श बैठ गया था। इशिका वसुधा के पास थी। उर्वशी ने जानबूझकर वहां एक एक्स्ट्रा चेयर लगाते हुए इशिका से मुस्कुराते हुए कहा, मिस सिंघानिया, अपनी चेयर को थोड़ा साइड कर लीजिए और मेरे लिए भी जगह बना दीजिए। इशिका उसे रोक पाती उससे पहले उसने जबरदस्ती वसुधा के ठीक पास वाली कुर्सी पर खुद को सेटल किया और वसुधा का हाथ पकड़कर वहां बैठ गई थी। वसुधा का हाथ पकड़कर उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, दादी, आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। अच्छी खबर का नाम सुनकर इशिका का ध्यान सीधा आयशा के पेट की तरफ गया। तो क्या उर्वशी आज आयशा की प्रेगनेंसी न्यूज सुनाने के लिए वहां आई थी? बोलो, क्या अच्छी खबर है? वसुधा ने बेरुखी से कहा। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपने पास आने का इशारा किया। आयशा जब उसके पास आई तो उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, आयशा ने पुलिस विभाग की मदद की है, इसके लिए उसे सम्मानित किया जाएगा, वो भी एक पब्लिक सेरेमनी में। सोचिए, राजवंश खानदान की होने वाली बहू ने इतना अच्छा काम किया तो हमारी भी तारीफ ही होगी। राजवंश फैमिली को अगर कोई छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती थी तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ तो आयशा ने उनके हिसाब से एक बड़ा काम किया था। उर्वशी के कहते ही तुरंत आयशा ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने तो वही किया जो एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है, मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। अरे, इसे हल्के में मत लो, ये बहुत अच्छा काम है। अब देखना, मैं पीआर टीम से इसे कितना हाईलाइट करवाकर मीडिया में कई दिन तक हाइप करवाऊंगी। जब तुम्हारी और नक्श की शादी होगी तब हमें और ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी। किसी भी बिजनेस फैमिली और कंपनी का न्यूज में रहना बहुत अच्छी बात होती है, उर्वशी ने जानबूझकर हर एक चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा। आयशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि माहिर की वजह से उसे इतनी ज्यादा इज्जत मिलने वाली है, जबकि उसने असल में कुछ किया ही नहीं था। आयशा ने उन्हें थैंक यू कहा और फिर इशिका की तरफ देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो इशिका को चिढ़ा रही हो। उर्वशी ने जवाब में कहा, मुझे थैंक यू मत कहो, तुम ये सब डिजर्व करती हो, और ऐसे हालातों में राजवंश एम्पायर को भी पॉजिटिव लाइमलाइट की जरूरत है जो सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रही है। देखना, तुम्हारी वजह से नक्श और कंपनी को बहुत फायदा होगा। उसके बाद उर्वशी ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर अभिमन्यु को देखते हुए कहा, और अभिमन्यु, तुम्हारी वाइफ की स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तुम उसे बोलो कि उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उसकी एब्सेंस में आयशा सब संभाल लेगी, वैसे भी वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पुलिस उसे सम्मानित करने वाली है, मीडिया और पब्लिक के बीच उसकी इमेज अच्छी है, तो राजवंश फैमिली को एक ऐसी ही बहू चाहिए। उर्वशी जानबूझकर आयशा की इतनी तारीफ कर रही थी और सबको यहाँ लेकर आई थी तो मामला आम नहीं हो सकता था। बस अभिमन्यु इंतजार कर रहा था तो उर्वशी का मुंह खुलने का।